पहला तिमोथियस उसका 6 अध्याय, पहला तिमोथियस हम क्रम से चल रहे हैं, 6 अध्याय है, 21 पद हैं। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं इसको ख़त्म कर लूँगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं होता। बच्चों कहानी ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति था और गांव से निकल के बॉम्बे गया। उसने अपने गांव में अपने घर वालों से कहा, मैं जा रहा हूँ और बॉम्बे बहुत अच्छा जगह है, बहुत बड़ी जगह है और मैं बहुत पैसा वहाँ कमाऊँगा। और कुछ दिन वहाँ रह करके उसने बहुत अपना काम धंधा किया, और काम धंधा करने के बाद और उसको वहाँ शौक उत्पन्न हुआ कि वो पैसे जमा करें और पैसे को वो करेंसी में जमा करें, जो कॉइन्स होती है कॉइन्स, उसमें जमा करें, सिक्कों में जमा करें, सिक्कों में जमा करें। और उसने एक बोरा लिया और बोरे में सिक्के डाले, फिर उसने एक कोट बनवाया, कोट में सिक्के डाले, पैंट बनाए, पैंट में सिक्के डाले, और काफ़ी, और जब काफ़ी हो गया तो कहने, अब मेरा समय आया कि मैं घर जाऊँ और घर में जा करके मैं अपने गाँव वालों को दिखाऊँ कि देखो मैंने बम्बई से क्या क्या कमाया है। और वो अपने घर वापस चला। जब वो गांव के पास पहुंचा तो उसका गांव सड़क से एक नदी थी, उसको पार करके जाना पड़ता था और उस नदी में कोई पुल नहीं था और नाव में चढ़ करके वो पार होना पड़ता था। ये व्यक्ति नाव में बैठ गया, नाव के किरवन आ रहा है, उससे कहा ठीक है मुझे इस गांव में पार पहुंचा दो, मुझे उस गांव में आना है, और बहुत कुछ बात करने लगा। जब बीच में पहुंचा तो लगा कि नाव उसकी डगमगाने लगी, और तो नाव का जो चलाने वाला था कि भैया जो था उसने कहा, भैया ये तो तुम्हारे ऊपर वेट है, वजन है, ये वजन नाव नहीं सह पा रही, और जैसे जैसे हम बीच में जाएंगे वैसे वैसे डूब जाएगी, तब तो तुम गड़बड़ हो जाओगे। तुम्हें तैरना आता है? नहीं, तैरना तो नहीं आता, मुझे तो तैरना आता है। उसने कहा मुझे तो तैरना आता है, अब क्या होगा? तो उसने कहा भैया नाव, और अभी अब ना वो इधर जा सकता था ना उधर जा सकता था, अब ऐसे जगह फंस गया। तब उसने कहा कि भाई ये जो बैग तुम्हारा भारी सा बैग है इसको फेंक दो, इस नाव में वजन ज्यादा है, अगर तुम इसको नहीं फेंकोगे अभी नाव डूब जाएगी। उसने उठा के उसको फेंकना पड़ा। उसको फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, अरे अभी भी तो इसमें वजन ज्यादा है, तुम्हारे जेब में कुछ भरा हुआ है, इसको भी तुम फेंकना, अगर नहीं फेंको तो नहीं बचोगे। अरे भैया बड़ी मेहनत से कमाया है, नहीं, तुम्हें जीवन चाहिए, जान चाहिए, जान चाहिए, हाँ जीना, गांव में तुम पहुंच नहीं पाओगे, भैया इसको भी फेंकना है। उसने सिक्के निकलवा के फेंकवाने शुरू करे, धीरे धीरे करते हुए उसको सारे सिक्के फेंकने पड़ गए और वो बहुत निराश हो गया। मैंने इतने मेहनत से कमाया था, मैं तो सोचा था गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं, लेकिन अब तो ना। उसने मैंने कहा तुम्हें धन चाहिए या जीवन चाहिए? और बाद में उस व्यक्ति ने जान लिया कि जीवन से बढ़कर कुछ और नहीं है। और आज का जो विषय है कुछ इसी तरह का है। जब पौलुस तीमोथियस को लिख रहा है और इस 6 अध्याय में पहुंचता है, वो कलीसिया के बारे में लिख रहा है, किस प्रकार ये झूठे शिक्षक जो है भरमाते हैं, और उन्हीं बातों को वो समझाते हुए इसको लिख रहा है। पिछली बार जब हमने देखा था, तो जब पिछली बार हम विचार कर रहे थे तो हमने देखा था किस प्रकार से परमेश्वर का वचन प्राचीनों के बारे में समझाता है, और उसके साथ साथ प्राचीनों किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए, बूढ़ों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, जवान महिलाओं के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, जो प्राचीन है जो सेवक है उनके उनसे किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, अगर उन पर दोष लगाना है तो ऐसे दोष न लगाया जाए बिना गवाहों के, किस रीति, सारी चीजों को हमने देखा था। और तब 6 अध्याय में हम पहुंचे थे जिसको आज हम कहना चाहेंगे। तो अगर आज हम देखते हैं तो मुख्य विषय वही पूरा जो तिमोथियस का मुख्य विषय है, गॉस्पेल सेंटर्ड चर्च, वो जीवन जो सुसमाचार केंद्रित है, गॉस्पेल सेंटर चर्च। आवर लाइफ शुड बी गॉस्पेल सेंटर, आवर चर्च शुड बी गॉस्पेल सेंटर। ये तिमोथियस में पॉलस बात को बहुत जोर दे रहा है कि अगर हमारा जीवन गॉस्पेल सेंटर है, सुसमाचार केंद्रित है, और सुसमाचार हमारे जीवन को चलाता है, तो हमारा जीवन फर्क होगा, हमारा परिवार फर्क होगा, हमारी सेवाएं फर्क होंगी, हमारे सेवक फर्क होंगे, और उसको हमें समझना है। आज सेवाओं की कमी नहीं है, सेवकों की कमी नहीं है, लेकिन सुसमाचार की कमी है, और उसको मुझे और आपको गंभीरता से लेना है। तो जब हम 6 अध्याय में आते हैं तो जैसे मैंने कहा, तो 6 अध्याय में एक भक्तिपूर्ण जो जीवन है किस प्रकार से अपने जीवन में प्रार्थमिकता को देता है, ए गॉडली लाइफ, द प्रायोरिटी इन गॉडली लाइफ, जो प्राथमिकता है मसीह जीवन, जो भक्तिपूर्ण जीवन है उसकी प्राथमिकता क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है। और मैंने एक छोटी सी आपको कहानी सुनाई, ये व्यक्ति जिसने जान लिया धन बड़ा नहीं है, जीवन बड़ा है। मनुष्य धन के लिए जी रहा है, जीवन के लिए नहीं जी रहा है, इसको हमें समझना है। और यही 6 अध्याय का एक पूरी तरह निचोड़ है। धन जरूरी है, धन जरूरी है जिसको हम देखेंगे, लेकिन कैसे जरूरी। सुलेमान जो था उसने एक रिसर्च की थी और उस रिसर्च के साथ उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन वो धन को गलत नहीं बताता। वो कहता परमेश्वर धन देता है, अगर दे देते तो कैसे देता, उसका किस रीति से लोग उपयोग करते हैं। लेकिन जो धन के कारण जीवन व्यतीत करते हैं वो जीवन जीवन नहीं है। और आज मनुष्य धन के कारण दीवाना है। और तब हम आगे बढ़ते से पहले पहले 3 भाग हैं, शायद मैंने कहा मैं पूरी रीति से इनको नहीं खत्म कर पाऊंगा। पहले से लेकर के दूसरे भाग में स्वामी और सेवक के संबंध में है। उसके बाद जब आगे हम पढ़ते हैं 3 से लेकर के 5 पद तक झूठे शिक्षकों के व्यवहार के बारे में है, एटीट्यूड ऑफ फॉल्स टीचर्स उनके बारे में है। तब आगे हम बढ़ते हैं 6 पद से लेकर 10 पद तक और 17 पद से लेकर 21 पद तक धन के बारे में, धन के प्रति हमारा व्यवहार और बिहेवियर टुवर्ड्स मनी। ये हमारा जो 6 पद से लेकर के 10 पद तक है, फिर उसके बाद 17 पद से लेकर 21 पद तक है, और बाद में 11 पद से लेकर 16 पद तक जो है वो भक्तिपूर्ण जीवन की का प्रभाव, और उसको आज अगली बार प्रभु ने चाहा तो हम देखेंगे। तो यहां पर हम इन बातों को देखना चाहते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं कि जो कलीसिया और कलीसिया में बाहर एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। एक विश्वासी का जीवन कलीसिया में और कलीसिया के बाहर, चाहे परिवार में है, चाहे आप समाज में है, चाहे ऑफिस में है, चाहे स्कूल में है, चाहे कॉलेज में है, कहीं भी है, आपका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, वो भक्तिपूर्ण जीवन होना चाहिए। अगर आपका जीवन भक्तिपूर्ण है तो किस प्रकार से वो प्रदर्शित होता है, यह है। झूठा सुसमाचार और झूठे सेवक सच्चे सुसमाचार को दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को झूठा आश्वासन दिलाते हैं और उनके सुसमाचार में केवल धन प्राथमिकता होता है, उनके सुसमाचार में केवल संपन्नता प्राथमिकता होती है, उनके सुसमाचार में संसारिक और शारीरिक बढ़ोतरी प्राथमिकता होती है। और इसलिए मुझे और आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है। परमेश्वर धन से बैर नहीं करता है, धन पाप नहीं है, धन के प्रति सोच और धन का इस्तेमाल वो हमें पापी बनाता है, क्योंकि परमेश्वर धन का भी स्वामी है, उसके अधिकार में। सो पहले 2 पदों में वो कहता है कि किस प्रकार से एक सेवक को अपने स्वामी के साथ व्यवहार करना चाहिए, चाहे आप कहीं पर हैं, और खास तौर से वो स्वामी जो विश्वासी हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। बहुत साधन है, जितने लोग जुए के नीचे अर्थात दास हैं वे अपने स्वामियों को पूर्ण सम्मान के योग्य समझें, जिससे परमेश्वर के नाम तथा हमारी शिक्षा का निंदा ना की जाए। पौलुस तीमोथियुस को लिखते हुए, उन कलीसिया को लिखते हुए, ये इफिसी की कलीसिया है, इस इफिसी की कलीसिया में तीमोथियुस पास्टर है, और वहां के विश्व के विश्वासी को, उस कलीसिया को पौलुस तीमोथियुस के द्वारा ये पत्र लिख करके भिजवा रहा है, जो तीमोथियुस के लिए भी है और तीमोथियुस के साथ साथ जो सेवा कर रहा है और विश्वासी के लिए भी है। वो कहता है दूसरे पद में, जिनके स्वामी विश्वासी हैं वे भाई होने के कारण अपने स्वामी का अनादर ना करें। मुझे ज्यादा इसके पर चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि आप जहां कहीं भी हैं, अगर आप ऐसी जगह में कार्य कर रहे हैं जहां के आपके मास्टर आपके स्वामी विश्वासी हैं, तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि आप उनका अनादर ना करें, अपनी बातों के द्वारा, अनाज्ञाकारिता के द्वारा, हट्टीपन के जीवन के द्वारा, डिटाई के द्वारा, बुराई करने द्वारा, कुछ और बातों द्वारा, लापरवाही करने द्वारा, आलस करने द्वारा, आप उनका अनादर ना करें, परंतु स्वामी की और अधिक सेवा करें, उनकी अधीनता में रहे, उनकी आज्ञाकारिता में रहे, क्योंकि जो इनका लाभ प्राप्त करते हैं वे विश्वासी और प्रियजन हैं। जिनका लाभ प्राप्त करते हैं वो विश्वासी, उनके और प्रियजन हैं। इन सिद्धांतों को सिखाता व प्रचार करता रहे। पौलुस तीमुथियुस कह रहा है तू इन सिद्धांतों को अपनी कलीसिया में, अपने विश्वासी लोगों में इस बात को सिखाता रहे और प्रचार करता रहे। यह जरूरी है कि विश्वासी लोग सीख सके कि जब आप किसी ऐसे स्थान पर हैं, अविश्वासियों के बारे में भी सिखाया गया, रोमियो उसके 13 अध्याय में हम पहले पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, और इसलिए वो कह रहा है कि इस प्रकार का व्यवहार उनको रखना है और उनको सिखाना है। कह रहा है पौलुस, कह रहा है तीमुथियुस तू इसका प्रचार करता रहे और इनको सिखाता रहे, क्योंकि मनुष्य भूलने वाला है, मनुष्य को बार बार सुनना है, मनुष्य को बार बार सीखना है। हो सकता है विश्वासी स्वामी कभी क्रूरता कर रहे हैं, हो सकता है विश्वासी स्वामी कभी अनर्थ कर रहे हैं, हो सकता है वो न्याय कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि वो आपके साथ कुछ और कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर न्याय परमेश्वर है। परमेश्वर स्वामी का बदला स्वामी को देगा, सेवक का बदला सेवक को देगा। इस बात को हमें ध्यान देना, परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा। सुसमाचार के द्वारा हमें जीवन मिला है। यदि हम विश्वासी हैं, यदि एक दिन हम संसार के समान थे, संसार में थे, संसार में चल रहे थे, हमारा जीवन संसार के अनुसार व्यतीत करता, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, पाप उठना बैठना खाना पीना था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यदि उस पाप के कारण हमारे पर दंड लग गया था और मृत्यु ने ठहरा दी चुकी थी, लेकिन प्रभु ने अपना प्रेम को प्रकट किया और मुझ पर आप पर दया की, अपने आप को मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी पर आया, उसने मारा गया, गाड़ा गया, उस तकलीफ को सहा, उस यातना को सहा, उस निंदा को सहा, ताकि मेरा और आपका जीवन उस दंड से बचाया जाए, पाप से छुड़ाया जाए, और उस पर विश्वास करने के बाद अब मुझे और आपने विश्वासी बना दिया। अगर पाप के छुटकारे के बाद मैं और आप विश्वासी बन गए और हम अपने आप को मसीह कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, तो हमारा व्यवहार फर्क होना है। यू आर क्रिश्चियन, हम मसीह, मसीह यीशु मसीह का के जो शिष्य हैं वो मसीह कहलाए। प्रेरित काम में लिखा हुआ है सबसे पहले मसीह जो शब्द आया शिष्यों के लिए। यदि मैं और आप यीशु मसीह के शिष्य हैं, विश्वासी हैं, सो पहला दो पद जो है इस बात पर जोर दे रहा है कि एक विश्वासी को होने के नाते जहां कहीं भी मुझे और आपको प्रभु ने रखा है, कलीसिया के लोग किस प्रकार से हम अपने स्वामी के साथ, अपने अधिकारियों के साथ व्यवहार करते हैं। कई बार हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कई बार निंदा का सामना करना पड़ता है, कई बार हमारे साथ अनजस्टिस होता है, कई सारी चीज होती है, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर उसको भी देखता है, परमेश्वर इसको भी देखता है, परमेश्वर इसका भी न्याय करेगा, परमेश्वर इसका भी न्याय करेगा, परमेश्वर इसको भी प्रतिफल देगा, परमेश्वर इसको भी प्रतिफल देगा। मुझे अपने सामने परमेश्वर को रखना है, प्रभु सहायता करें, तब हम आगे बढ़ते हैं। तब 30 पद से लेकर 5 पद तक इन झूठे शिक्षक, झूठे शिक्षक क्या करते हैं, मुख्य जो पाठ है इस विषय में अब आगे चल करके धन के बारे में आ रही है, जिसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धन के बारे में आ रही है। वो क्या कह रहा है, यदि कोई भिन्न प्रकार की शिक्षा देता है, भिन्न प्रकार की, कौन सी भिन्न प्रकार की शिक्षा, क्या कह रहा है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ठोस वचन तथा भक्ति के अनुसार शिक्षा से सहमत नहीं होता। भिन्न प्रकार की शिक्षा या झूठे शिक्षक क्या देते हैं, ये संपन्नता का सुसमाचार देते हैं, तुम विश्वास कर लो, तुम यीशु के पीछे चलो, तुम ये कर लो, तुम्हें महल मिल जाएगा, तुम्हें बिल्डिंग मिल जाएगी, तुम्हें बंगला मिल जाएगा, तुम्हें मोटर कार मिल जाएगी, तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए जो है ये हो जाएगा, और लोग इसी में आज दीवाने हैं, क्योंकि उनको भक्तिपूर्ण जीवन की इच्छा नहीं है। यूट्यूब में देख लीजिए, प्रचारों को देख लीजिए, मुझे माफ कीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, क्षमा कीजिएगा नाम देने के लिए, मैं जॉयस मेयर का नाम आपने सुना, प्रभु ने मुझे अवसर दिया 95 में उनके ऑफिस में जाने का कुछ काम से, और मैं इन्वॉल्व होना चाहता था, लेकिन जब मैंने वहां देखा प्रभु ने स्पष्ट मुझसे कहा तुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, सिंगापुर में मना करा, डिसाइड करा। मेरे प्रियो हम किस शिक्षा पर ध्यान देते हैं, वो परमेश्वर का वचन ठोस, वो जो जीवन प्रदान करता है, जो सिद्धता प्रदान करता है, जो परिपक्वता प्रदान करता है, जो धार्मिकता प्रदान करता है, जो भक्ति का जीवन देता है, वो जीवन जो इसके बाद भी जीवन अनंत काल तक परमेश्वर के साथ बने रहने वाला जीवन है,
वो प्रदान करता है, उस जीवन के पीछे हम यह है, उस जीवन की चाहना है। वो कह रहा है वो ठोस वचन तथा भक्ति के अनुसार शिक्षा नहीं है, हमें पहचानना है। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हमें परख का आत्मा दीजिए, ताकि हम झूठी शिक्षाओं को, जो भक्तिपूर्ण नई शिक्षा है, उनको हम पहचान सकें, उन पर हम चल सकें, उन पर हम निर्भर हो सकें। और हमें खराई और सच्चाई के साथ वचन को देने में कभी डरना नहीं है। कहता है ऐसा नहीं, तब वो कहता है कैसे हैं लोग, वो अहंकारी हैं और कुछ भी नहीं, वो अहंकारी और कुछ भी नहीं समझता, जो झूठा शिक्षक है, घमंड से भरा हुआ है, संसारिकतावाद में, भौतिकतावाद में, दुनिया की चीजों में वो घमंड से भरा हुआ है, इन सारी चीजों से भरा हुआ है। और वो कहता है कि वो अहंकारी है, कुछ नहीं समझता, उसे वाद विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग लगा हुआ है, जिससे ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, अश्लील भाषा और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सत्य के से दूर हो गए हैं और जो भक्ति के लाभ को साधना मानते हैं। लाभ को, कौन सा लाभ? भक्ति के नाम से जो हमें लाभ मिल रहा है उसको हम साधना मान। परमेश्वर कौन सा लाभ देता है? परमेश्वर भूखा नहीं रखता, परमेश्वर नंगा नहीं रखता, परमेश्वर किसी न किसी छत सोने के लिए देता है, परमेश्वर करता है। लेकिन ये तो कुछ और कहते हैं, ये तो कुछ और शिक्षा देते हैं, ये तो कुछ और बताते हैं, ये तो कुछ और बहकाते हैं। ये ऐसे लोग हैं और इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जाएगी। और अंतिम दिनों में मुझे और आपको सचेत और सावधान होना है, झूठी शिक्षकों से सावधान रहिए। भैया सुन लो, 100 रुपए दोगे तो तुम्हें 1000 रुपए मिलेगा। अरे परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर तुम्हें महल भी दे देगा, कार भी दे देगा, ये भी दे देगा, वो भी दे देगा, कार दे देगा, ये दे देगा, बेकार कर देगा। सावधान रहिए, सचेत रहिए। परमेश्वर क्या देने वाला परमेश्वर है? परमेश्वर क्या देने वाला परमेश्वर है? परमेश्वर ने अगर आपको जीवन दिया, सबसे बड़ी चीज यह है, यदि आपके पापों से आपको छुटकारा नहीं मिला, चंगाई मिल गई, दुष्ट आत्मा निकल गई, लेकिन फिर भी आपका जीवन, आपका हृदय पाप में है, आपको उद्धार का अनुभव नहीं है, आपको नए जन्म का अनुभव नहीं है, आपको पापों की क्षमा का अनुभव नहीं है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते कर रहे हैं, आपका सब कुछ बेकार है। आप उसी व्यक्ति के समान हैं, जमा तो कर रहे हैं, जमा तो कर रहे हैं, लेकिन जब मझधार में पहुंचे तो बेकार हो गया, सब कुछ करा। थोड़ी देर के लिए आप अपने बारे में सोचिए, मैं अपने बारे में आगे चल करके। तब वो क्या कहता है? लेकिन छठा पद इस अध्याय का मुख्य पद है, छठा पद, 6 वर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहता है, वो बहुत लंबी लिस्ट से झूठे शिक्षक को बताता है, करीब 9-10 बातें हैं, लेकिन तब छठे पद में, छठे से लेकर 10 पद तक वो इस बात को कहता है कि एक सचमुच में संतुष्टि का स्रोत क्या है। संतुष्टि, वो कह रहा है, परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। महान कमाई, केवल कमाई नहीं है, महान कमाई, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसका प्रेम महान प्रेम है, उसकी क्षमा महान है, उसकी चीजें महान है, वो महान परमेश्वर है। और अगर सच में हम भक्ति का, वो भक्ति का जीवन जो परमेश्वर देता है वो दें के लिए जीना चाहते हैं, तो वो कहता है कि संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। धन महान नहीं है। किसी ने कहा है, सेटिस्फेक्शन इज द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन इज द सोर्स ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। संतुष्टि सही आनंद का सच्चा स्रोत है। हम क्यों परेशान रहते हैं आज, क्यों परेशान है? एक कपड़ा, दो कपड़ा, चार कपड़े, पांच कपड़े, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, एक चीज, दो चीज, चार चीज, पांच चीज, भरते चले जाते हैं, क्यों संतुष्टि नहीं है? हमें सोचना है इस बात को। जब हम आगे बढ़ते हैं, संतुष्टि सच्चा सुसमाचार प्रदान करता, पहली बात, संतुष्टि सच्चा सोच और विचार को उत्पन्न करती है, दूसरी बात, संतुष्टि सही दृष्टिकोण को प्रदान करती है, सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। हम सही दृष्टि से चीजों को देखते हैं, सही दृष्टि से संसार को देखते हैं, सही दृष्टि से अपनी नीच को, अपनी आवश्यकताओं को देखते हैं। कितनी बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें संतोष का जीवन दीजिए। कितनी बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें संसार में सही दृष्टिकोण दे दीजिए, सही दृष्टि प्रदान कर दीजिए। वो आगे क्या कहता है, क्योंकि ना तो हम संसार में कुछ लाए हैं ना यहां से कुछ ले जाएंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सुनते हैं, कई बार हमने मैंने उसका जिक्र करा है। जब उसकी मृत्यु हुई थी तो मृत्यु से पहले यंग आयु में, जवान आयु में वो उसको संसार को छोड़ के चला गया। उस छोटी आयु में उसने बहुत कुछ अपना नाम कमाया और उसने कहा, मेरे मरने के बाद मेरे कफन से दोनों हाथों को बाहर कर देना और ये लिखवा देना, देखो अलेक्जेंडर द ग्रेट खाली हाथ आया और खाली हाथ जा रहा है। मेरे प्रियो, सच है, कितने लोगों के बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, जो इस दुनिया में रह करके अपने जीवन को धन के कारण बर्बाद कर देते हैं, परिवार में अशांति उत्पन्न करती है, संबंध बिगड़ते हैं, सब कुछ नाश हो जाता है, बच्चे सफर करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? अभी हम देखेंगे परमेश्वर वचन क्या सिखाता है, देखेंगे उसको आगे चल के। तो यहां पर वो कुछ बातों कहता है आगे चल करके, हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से भक्तिपूर्ण जीवन, भक्तिपूर्ण जो हृदय है वो मसीह प्रदान करता है, वो जो है मसीह प्रदान करता है। ये धन जीवन का में जोखिम का कारण होता है, जो धनवान बनना चाहते हैं वो खतरे में रहते हैं, और चार खतरों को वो आगे वर्णन कर रहा है इसके, जो आगे चल के 9 और 10 पद में हम देखते हैं चार खतरों को, 4 dangers और 4 warning आप कह सकते हैं इन वर्सेस 9 और 10। पहली बात, यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है इन्हीं से हम संतुष्ट रहेंगे। ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी इस पार पर विचार किया, क्या आपने विचार किया, यदि आपके पास कम है तो आपसे अधिक कितने लोग हैं जिनके पास आपसे कम है। यदि आपके पास कम है तो आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास इतने असंख्य लोग हैं जो जिनके पास आपसे भी कम है। क्या विचार आता है? नहीं आता। यदि आपके पास अधिक है तो आपके सामने और ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास आपसे भी अधिक है। और समस्या क्या होती है, हम उनको देखते हैं जिनके पास अधिक है, उनको नहीं देखते जिनके पास कम है। हमारी दृष्टि नीचे नहीं होती, हमारी दृष्टि ऊपर ही उठी रहती है, और यही हमारे लिए फंदे का कारण बन जाती है। अरे उसके पास ये भी है, अरे उसके पास ये भी है, अरे उसके पास वो भी है, अरे उसके पास वो भी, मेरे पास तो नहीं है, हमारे पास तो नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर में खटिया तोड़ते रहे और पड़े रहे और कह रहे कोई बात नहीं। वचन को गलत मत इंटरप्रेट करिएगा, लेकिन आज विषय कुछ और है। मैंने इसी बार, इसलिए पिछली बार सुस्ती के बारे में, आलस के बारे में प्रचार किया था, उसको भी याद रखिएगा। परमेश्वर काम करने के लिए मना नहीं करता, मेहनत मजदूरी करने के लिए मना नहीं करता। पिछले एक हफ्ते भाई, एक भाई मेरे पास आया, माफ कीजिएगा, हम लोग बैठे हुए थे, भाई कई लोग, मैंने कहा भाई आप क्या एडमिशन हो गया? अभी कुछ पेपर जमा करने हैं। क्यों पेपर जमा करने हैं? हाँ मुझे डॉक्यूमेंट्स लाने। कहाँ से लाने? घर से लाने। तो क्यों नहीं लाए? अभी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ। क्या व्यवस्था? घर में जाने के लिए किराया चाहिए। हमने कहा ऐसा है, आप यहाँ पर रहकर काम करिए, पेंटिंग करना है पेंटिंग करिए, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। जो व्यक्ति काम ना करे वो खाने ना पाए, ये परमेश्वर का सिद्धांत है। नहीं करा उसने काम, नहीं करा उसने काम, ये सही जीवन नहीं है। हाँ वो अगर 2 घंटे काम करता हम शायद उसको और अधिक उसके लिए करने के लिए तैयार होते। और मेरा 40-45 साल ऐसे नहीं हो गए, बूढ़ा सर गंजा ऐसे नहीं हुए। कई बार लोग मुझे दूसरा तरह समझते हैं, पर प्रभु ने परख का आत्मा दिया, प्रभु ने अनुभव दिया है। गलती करके सीखा है, और जो जवान हमारे बीच में गलती करके सीखेंगे वो भी सीखेंगे, दिन समय आएगा वो भी सीखेंगे। समझना है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। तो क्या दृष्टि आपकी? आगे वो कह रहा है चार बातें जल्दी से। पहली बात 9 पद में, परंतु जो धनवान होना चाहते हैं, आप धनवान होना चाहते हैं, लेकिन सावधान रहिए। परमेश्वर के वचन है, मैंने अपने जीवन में दो पदों का आधार माना है और सच शेयर करता हूं। एक तो प्रोवर्स नीति वचन उसका 30:7-8-9 पद, सुलेमान प्रार्थना करता है, ना तो मुझे धन दे, ना तो मुझे धन बना, ऐसा ना हो कि मेरे पास बहुत हो और मैं तुझे तेरा इनकार करूं, ऐसा ना हो कि मैं मेरे पास घटी और कमियों में अपने हाथ फैलाऊं, परंतु प्रतिदिन की रोटी तू मुझे दिया कर। और ये यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई है, ये यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई है, हमारे प्रतिदिन की रोटी प्रभु आज हमें दे, यही प्रार्थना सिखाई है। वचन को प्रमाणित करता है। सुलेमान को किसने बुद्धि दी थी? परमेश्वर ने दी, वही परमेश्वर अपने मुख के द्वारा यह वचन लिखवा रहा है। तो कहता है पहली चीज, जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन के फंदे में फंसते हैं। पहली बात, प्रलोभन। अगर आप धनवान होना चाहते हैं तो आप ऐसे फंस जाएंगे, पहला फंदा क्या है? प्रलोभन, लालच आपके अंदर आता चला जाएगा, लालच आपका स्वामी बनता चला जाएगा, लालच आपका स्वामी बनता चला जाएगा, ना केवल लालच बनता चला जाएगा। वो कह रहा है जो आप अगर ऐसे हैं तो आप इस प्रकार के फंदे में फंस जाएंगे। दूसरी बात, ना केवल आप फंदे में फंसेंगे, वो कह रहा है पहली बात जो धनवान बनना चाहते हैं क्या कहता है, वो प्रलोभन में फंसते हैं, फंदे में फंसते हैं। दूसरी बात, अनेक मूर्तापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं। तीसरी बात, वो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है, मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में गिराती। शैतान बहुत चतुर है, लॉलीपॉप बहुत अच्छी तरह से दिखाता है, जानता है। कई बार बच्चों को हम लोग आकर्षित करते हैं, ऐसे उनके साथ विचार साथ करते हैं, बच्चों दिखा दिया, अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो, अच्छा ठीक है, एक लॉलीपॉप, दो लॉलीपॉप, उसके पीछे। शैतान भी हमारे साथ ऐसे व्यवहार करता है, वो भी हमें दिखाता है, कई सारे दिखाता है। वो कह रहा है वो विनाश और गर्त में गिरा देता, कैसे? एकदम से नहीं होता, धीरे 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 धन की चीजें घेरती चली जाती हैं, घेरती चली जाती हैं। मेरे प्रियो, उतार के फेंकना सीखिए, फेंकना सीखे, कहीं ना कहीं मजदार में फंस जाएंगे आप। उस इलस्ट्रेशन को याद रखिए, कोर्ट में सिक्के भरे थे, मत बटोरिए संसार की चीजों को, मत उसमें आनंद उठाइए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना कीजिए, असंतुष्टि के जीवन को मत पकड़ने दीजिए। चौथी बात वो कहता है 10वें पद में, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। धन नहीं है, धन जड़ नहीं है, धन हमारी आशाओं पूरा करता है, परमेश्वर धन देता है। सबोपदेश में पढ़िए, बहुत अच्छी नीति वचन में भी, जिसको परमेश्वर ने धन दिया है उसको परमेश्वर ने खाने की शक्ति और आनंद दिया है, यह परमेश्वर वचन। कितने लोग धनवान है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, बेचारों के पास धन की कमी नहीं है, महल बने हुए, लेकिन आज खाना नहीं खा पाते, कहीं उबली दाल खा रहे हैं, कहीं ये खा रहे हैं, कहीं वो खा रहे हैं, कहीं वो खा रहे हैं। धन तो बहुत है उनके पास, विचारना है। वो कहता है क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, कुछ लोग तो इसी लालसा में विश्वास से भटक गए हैं। चौथी बात, चार चेतावनी है, चार चेतावनी। क्या विश्वास? विश्वास की हम बातें कर सकते हैं, विश्वास की कहानी सुना सकते हैं, विश्वास के सब कुछ करते हैं। कितना अधिक घुटनों के बल होकर परमेश्वर के सामने आप विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं, कितना अधिक आपने विश्वास के जीवन को अपने जीवन में देखा है, कितना अधिक परमेश्वर सामने रो रो के कहने की तैयार थे, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। जब प्रभु यीशु मसीह थे, शिष्य से बात करते, शिष्य ने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। वो विश्वास जो हमें भक्तिपूर्ण जीवन में जीना सिखाता है, वो विश्वास जो हमें परमेश्वर के साथ दिन पर दिन धार्मिकता में जीवन को बनाता है, वो विश्वास जो इस यात्रा में हमें परमेश्वर के साथ चलना सिखाता है। हम बीच में नहीं रुकना चाहते, मझधार में नहीं रुकना चाहते, हमें उस सागर को, उस नदी को पार करना है और उस स्थान पर पहुंचना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। हम यात्री और मुसाफिर हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, और जब यात्रा कर रहे हैं उन चीजों को मत ला दिए जो आपकी यात्रा को बीच में समाप्त कर दे। सावधान हो जाइए। क्यों नहीं हम प्रभु को देना मांगते? उसका एक कारण यह भी है, दसियों बहाने हमारे पास रहेंगे लेकिन हम अपने जेबों में लाद रहे। एक मसीह विश्वासी, सच्चा विश्वासी बहानेबाजी नहीं करेगा। वो परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन व्यतीत कर गया, वो विश्वास में जीवन व्यतीत करेगा, वो आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करेगा, वो परमेश्वर का सम्मान करेगा। उसके लिए परमेश्वर प्राथमिक है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है चेतावनी के साथ। तब आगे चल करके 17 पद से लेकर आगे चलकर 19 पद तक इस चीज को ध्यान रखें। आगे बढ़ने से पहले, जो आपके पास नहीं है उसके लिए लालच के फंदे में मत फंसिए। प्रभु धन्यवाद हो जो कुछ आपने मुझे दिया है, धन्यवाद हो जो कुछ आपने मुझे दिया है, मैं उसकी स्तुति करता हूं, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप काम ना करें, चुपचाप से घर पे बैठे। परमेश्वर ने जो उत्तरदायित्व दिया उसको पूरा करें। परमेश्वर आपके प्रतिफल के परिश्रम के अनुसार आपको फलवंत करेगा, आशीषित करेगा। यदि परमेश्वर कल आप कुछ देना चाहता ठीक है, लेकिन उसके लिए जीवन बर्बाद मत करिए। घी की बोतल लग करके बाहर उंगली लगा करके केवल ना चाटिए। कितने लोग हैं, बच्चे परेशान होते हैं मेरे से, कई बार कई बच्चे आते हैं कहते हैं हमारे पिताजी हमारी माताजी ऐसे हैं कि हमारे लिए एक पैसा नहीं खर्च करना मांगते। क्यों, क्या कर रहे हैं आप? और प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे लोगों को लाकर दिया है जिनको हम देखा है, उनके जीवन के अंत को देखा है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप गुलछड़े उड़ाइए, वो मतलब नहीं है, लेकिन संतुलित जीवन व्यतीत करें जो वचन के अनुसार है। वचन को पढ़िए, वचन को सीखिए, वचन को मानिए। हमारे पास समय नहीं है वचन पे जाने के लिए, हम व्यस्त हैं संसार की चीजों में। दुनिया भर के लिए समय है हमारे पास, परमेश्वर के वचन। जब परमेश्वर के वचन के साथ हम नहीं रहेंगे तो कैसे सीखेंगे? वो कह रहा है उसको सिखा, प्रचार कर। कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे? और जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, कैसे मानेंगे? ये मसीह जीवन, बिना वचन के मेरा और आपका जीवन बेकार है। अगर इससे प्रेम नहीं किया, इसको आपने अपने जीवन में नहीं लिया, इसको नहीं अपनाया, इसको नहीं खाया, आपका जीवन व्यर्थ है। ये वो रोटी है जो मुझे और आपको जीवन प्रदान करती है। इसका सम्मान करना सीखे, केवल कपड़े में लपेट के नहीं, अच्छा कवर चढ़ाकर नहीं, लेकिन इसको अपने हृदय में बसाकर, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यह परमेश्वर का वचन कहता है। जब तक मेरे और आपके जीवन में अनुशासन नहीं होगा, जब तक मेरे आपके जीवन में नींद को त्याग नहीं होगा, पिछले संडे मैं यही प्रचार कर रहा था, जब तक मेरे आपके जीवन में अनुशासन नहीं होगा, हम परमेश्वर के साथ जीवन को नहीं व्यतीत कर पाएंगे। कोई हमें 8 बजे 6 बजे सुबह नौकरी पर बुला लेता है, हमारे भाई लोग जो यहां पर काम करते हैं, कितने सुबह सुबह बेचारे ड्यूटी पर जाते हैं, लेकिन वचन के साथ हम क्या करते हैं? मेरे प्रियो, अगर आपको भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना है, धार्मिकता का जीवन पाना है, इस वचन का आदर करिए। संसार नाश हो जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन यह वचन सदा तक बना रहेगा। प्रभु ने ऐसी रोटी दी है मुझे और आपको जिसमें ना कीड़े लगेंगे, ना कभी सड़ेगा, ना कुछ होगा, लेकिन अनंत तक बने रहेगा। और इसी वचन के अनुसार मेरा और आपका न्याय भी किया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बहुत बड़ी आशीष है ये बाइबल जो मेरे और आपके हाथ में है। कितने लोगों ने इसको नाश करना चाहा? आपको शायद इतना इतिहास नहीं मालूम, लेकिन हमारे भारत में कुछ लोगों ने कोशिश करी थी, मुझे प्रभु मौका देता बाहर जाने का, लोगों से मिलने का, कि क्रिश्चियंस की प्रेस जितनी बाइबल छपती है उस धीरे धीरे खत्म कर दिया, बंद कर दी जाए, और लोग अभी भी लगे पड़े। लेकिन कुछ भी करेंगे, परमेश्वर का वचन वो समाप्त नहीं कर पाएंगे। 17 पद से लेकर आगे तक कुछ बातों कहता है वो, दो मुख्य बातें हैं। जब आपके पास अधिक है तो आपके पास आपका व्यवहार कैसा होना है? यदि आपके पास है तो आपका व्यवहार कैसा होना है? जो इस वर्तमान संसार में धनवान है उन्हें आदेश दे, क्या आदेश दे? वे अहंकारी ना बने और अनिश्चित धन पर नहीं। यह अनिश्चित धन है, आज है कल चला जाएगा। सन 71-72 में
यहां पर बहुत बड़ाई थी लखनऊ में, और पूरा ये स्टेडियम के पास से गोमती से लेकर के पूरा अलीगंज तक पानी पानी पूरा, इस समय तो सारा जंगल था। कितने घर उस समय डूब गए थे। सन 84 में गांधीग्राम के लोग यहां पर हैं, गांधीग्राम में जब बाढ़ आई थी पूरा गांव सब, आप पूछ लीजिएगा इन लोगों से, पूछ लीजिए जो वहां से आए। जब हम पहली बार वहां कर गए तो जानवर ऐसे सड़े हुए थे, उस समय हम बाराबंकी में थे। कितना लोगों पास धन था, कितना सब कुछ था, वो जीवन बचाएंगे, चीजों को बचाएंगे। अनिश्चित धन, वो कह रहा अनिश्चित धन पर वो मत करिए, हमने जानते कल भूकंप आ जाए, हमने जानते कल भूचाल आ जाए, हमने जानते कल तूफान आ जाए, हम नहीं जानते। आपको मालूम है जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आता है, उसमें यूपी टॉप लिस्ट पर है, और कभी भी भूकंप आ सकता है इस यूपी में। प्रभु का धन्यवाद हो, हमें तो खुशी होगी, हमने यही कहते हैं प्रभु उठा लीजिएगा, टांग तोड़ के मत रखिएगा। सही बात है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें सचेत होना है। डरना नहीं है, हमें डर के जीवन नहीं व्यतीत करना, भयभीत होकर जीवन, परमेश्वर के वचन को समझना। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। बिहार में जब भूकंप आया था उस समय ओएम के कुछ भाई लोग थे और एक घर में प्रार्थना कर रहे थे, वो आसपास के कई जगह पे असर पड़ा लेकिन उस घर पे असर नहीं पड़ा। परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारे। हमारा भाई राजेश, उसके घर पूरा जल गया था, लेकिन अद्भुत लगता है, कई सारी चीज जल गई लेकिन एक कैलेंडर रखा था, वो कैलेंडर नहीं जला। मैं पूजा की बात नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझाने बात कर रहा हूं। और उसी के कारण लोगों को, गांव में लोगों को सोचने में मजबूर हुआ। परमेश्वर कब कैसे काम करता है हम नहीं जानते। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि उसके लिए पूजा करें या करें, वो मैं नहीं कहना चाह रहा, पर परमेश्वर के हाथ को हम नहीं जानते, परमेश्वर की निरंतर को हम नहीं जानते, परमेश्वर की योजना को हम जानते, पर हम हर समय तैयार रहते हैं। और वो कह रहा है कि अहंकार ना हो, अनुग्रह बहुत ऐसे देता है, जिसने उद्धार बहुत ऐसे दिया है, जिसने जीवन बहुत ऐसे दिया है, जो विश्वास बहुत ऐसे देता है। धन की बात नहीं करता वो, धन तो डेली जीवन के लिए रोटी और कपड़ा और मकान तो देता ही देता है, जो अनुग्रह बहुत ऐसे देता है, जिस अनुग्रह में होकर हमने उद्धार को प्राप्त किया है, जिस अनुग्रह में होकर वो हमें विषम परिस्थिति में संभालता है, जिस अनुग्रह में होकर वो हमें आगे बढ़ाता है, जिस अनुग्रह में होकर हम उसको देखते हुए आगे बढ़ते चलते, वो बहुत ऐसे देता है। हम घमंडी ना हो, हम उस धन पर निर्भर ना हो, लेकिन जो परमेश्वर हमें देता है। दूसरी बात, जो धनवान है वो क्या कहता है, 18 पद, उन्हें आदेश दे कि वो क्या करें। वो लिख रहा है अपना ध्यान रखें, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएं, अपने घर को पक्का बनाएं, अपना अपने बाल बच्चों को, अपना बीबी का, अपना इसका करें। ये कह रहा है वो, नहीं, अपना सौर छोड़ दीजिए, अपना सौर छोड़ दीजिए। वो कह रहा है जो भले कार्य में धनी बने, दानशील उदार बने। भले कार्य, कितने आज भले कार्य करने तैयार रहते हैं, कितने किसी मरीज की सेवा सहायता करने तैयार रहते हैं, कितना किसी को रोटी खिलाने के लिए आप तैयार रहते हैं। वो भले कार उस रीति से नहीं कहता जो मंदिर से, मस्जिद से या चर्च के बाहर निकल करके, चर्च के बाहर हम तो यहां रोकते हैं, लेकिन बड़े बड़े चर्चों में जाइए तो मालूम है 25 दिसंबर आ गया तो बहुत सारे भिखारी लग जाते हैं और लोग क्या करते हैं, ले जाके रोटी बांटते हैं, भले काम कर रहा है। वो झूठी संतुष्टि है। जो आपके साथ रोज रह रहे हैं उनके साथ कितना भला कर रहे हैं आप, उनकी चिंता कितना कर रहे हैं, किसी गरीब परिवार को कितने बार आपने अपने पास बुला लिया है, उनको रोटी बांट दी है, भले कार है। कह रहा भले कार है। उसके बाद वो कहता है वे उसमें धनी बने, दानशील उदार बने आपका हृदय, कि वे अपने लिए ऐसा धन संचय करें कि भविष्य के लिए अच्छी नींव डाली जाए। और वो क्या कहता है, जिससे वे उसको पकड़ ले जो वास्तव में जीवन है। किसको पकड़ ले, जो वास्तव में, ये तो हम शुरू से देख रहे हैं, शुरुआत तो वही करी थी हमने, धन और जीवन, उसको पकड़ना है जो जीवन है, वो जीवन जो नाशमान है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो जीवन पाए जो कभी नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह जीवन देना चाहता। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह कंगाल बनाकर नहीं रखता। अगर हम कंगाल होते हैं तो अपने कारण से होते हैं, क्योंकि हम आलसी हैं सुस्त हैं, लापरवाह हैं, घमंडी हैं, काम चोर हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन वचन की सच्चाई है। कभी कभी कड़वा इस वचन को मिलना भी चाहिए। सच्चाई, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमारी पीढ़ को संभालता है। समय नहीं, लेकिन वचन पढ़िए, भजन संहिता 25 जाके पढ़िएगा घर में, भजन संहिता 25 8 से लेकर भरा, परमेश्वर भला है। उसके बाद देखिए कि परमेश्वर की भलाई कैसी है, भरा पड़ा वचन। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। सो आज खास बात क्या है, आज का परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। हे प्रभु, मेरे अंदर अपना संतोष दे दीजिए, अपना सेटिस्फेक्शन दे दीजिए, मेरी सहायता कर दीजिए, मैं निर्बल हूं, मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए। जो आपने दिया मैं इसके लिए धन्यवादित हूं, कृतज्ञ हूं, आभारी हूं, क्योंकि कितने ऐसे उनके पास वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, परंतु मैं आपके प्रति विश्वास हूं। पर मेरे प्रियो, उसके चक्कर भी ना पड़िए। पिछले हफ्ते मैं बता रहा था, शायद बुधवार को यहां पर बाराबंकी जम गए, एक भाई मेरे पास आया, कहले अंकल मेरे पास एक लेटर आया। मैंने क्या लेटर आया? वो दाया, उसके पास एक टिकट था और उसने स्क्रैच करना था, स्क्रैच करा, उसमें इनाम है आपके लिए 750,000 रुपए। ओ भाई बड़ा खुश हो गया, 750,000 रुपए। मैंने कैसे मिला? वो मेरा फोन, मैंने फोन खरीदा था, तो फोन खरीदा था, उसमें एक कार्ड आया और उन्होंने, मैंने भैया लुट जाओगे, लुट जाओगे 7 लाख के चक्कर। चतुराई क्या? ना वेबसाइट, ना ईमेल, ना कुछ। इस पर फोन करिए, इस नंबर पर फोन करिए, समझ रहे हैं? और तब उसमें क्या कि आपको पहले जो टैक्स है, जो 750,000 का, वो टैक्स आपको जमा कर देना पड़ेगा। वो तो अच्छा हो भाई, सही रीति से समझ लिया उसने, क्योंकि वहां पर एक और भाई था, पहले यहां काम करता था, भाई देशराज का बहुत क्लोज मित्र था वो, यहां पर उसने अपनी जमीन बेच दी, अपनी गाड़ी थी वो बेच दी, सब कुछ बेच दिया, किसी को बताया नहीं, बताने बेच रहा, और वो लोग कहते तुमको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, वो उसी के लिए बेच। बाद में आज कंगाल बन गया, आज वो मजदूरी कर रहा है। क्यों? धन का लोभ, धन का लोभ। परिश्रम करके कमाइए, मेहनत करके कमाइए, लॉटरी मत खेलिए, लॉटरी के पीछे मत जाइए, ब्याज में पैसा मत चलाइए, ब्याज के पीछे मत जाइए। धन कैसे कमाना, परमेश्वर का वचन बताता है, सच्चाई के साथ। झूठ मत बोलिए, छल मत करिए, धोखा मत करिए, किसी का लेकर वापस करना मत भूलिए। धन फालतू गलत रीति से मत कमाइए, सही रीति से। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता तरीके को, जब हम स्टूवर्डशिप के बारे में सीखते हैं तो बताता है परमेश्वर हमें। फिर से मैं कह रहा हूं, कंगाल नहीं रखता वो, हमें रोटी भी देता है, हमें कपड़ा भी देता है, हमें रहने के लिए छत भी देता है। परंतु सावधान रहिए उन झूठे शिक्षकों से जो भक्ति की जगह आपको केवल धनवान बनने की बात करते हैं, धार्मिकता की जगह संसारिकता की बात करते हैं। उनसे सावधान रहिए, ऐसे एडवर्टाइजमेंट से सावधान रहिए, ऐसे मीटिंग से सावधान रहिए, ऐसी जगह जाने से सावधान रहिए, ऐसे लोगों पीछे पैसा देने से बर्बाद मत होइए। आपका धन बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपकी एनर्जी बर्बाद होगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे दो गोलबास ये हो बढ़ते जाएंगे। बाइबल कहती है वे आश्चर्यकर्म करेंगे, मुर्दों को जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब आप पूछेंगे प्रभु हमने आपके नाम से ये क्या, ये क्या, प्रभु क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन कहते हैं परिश्रम करता है, प्रभु उसके परिश्रम पर वो कहता है तेरे हाथ के कार्य पे मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे हाथ के कार्य पे मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रिय प्रभु सहायता करें। परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में अच्छी कमाई है। प्रश्न ये है, आज मेरा और आपका जीवन धन के प्रति कैसा है? यदि धन आपका सेवक है, आप स्वामी है, तो आप धन पर प्रभुता करेंगे। यदि धन आपका मास्टर है, आपका स्वामी है, तो वो आपको पर प्रभुता करेगा। आप किसको प्रभुता करने देंगे? और अगर आपने धन को प्रभु बना दिया तो फिर प्रभु आपका प्रभु नहीं रहा। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें कि हम परमेश्वर के द्वारा उन धन की आशीष को प्राप्त कर सकें। जो पोषण हमने छोड़ा है, आगे संडे को हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, उसके बीच में क्यों ये पोषण लेकर आया है, इस बीच में क्यों लेकर आया, वो एक भेद की बात है, वो एक भेद की बात है। प्रार्थना के साथ आइएगा, हम आ गया, आइए हम प्रार्थना करें।